ओम शांति। As was announced this morning, English class by Mohini Ben will be upstairs in Harmony Hall. तो ब्रह्मा बाबा की जीवन की अद्भुत कहानी कितनों ने पढ़ी है, जरा हाथ उठाना। ठीक है। तो शिव बाबा को हमारे आगे प्रत्यक्ष ब्रह्मा बाबा ने किया। तो जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं तो शिव बाबा को तो इतना जानते नहीं, उतना हमारा गहरा कनेक्शन नहीं होता। तो हमारा कनेक्शन होता है साकार ब्रह्मा से। भक्ति में देवी देवताओं को पूछते थे, ज्ञान में हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एक मिसाल बन गया। तो जो शिव बाबा के गुण है वो हम सभी ने ब्रह्मा बाबा द्वारा देखे। तो शिव बाबा को हम कहते हैं बाप टीचर गुरु, ब्रह्मा को अलौकिक पिता कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का भी इतना अलौकिक प्यार था, जो प्यार के आगे सभी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। शिव बाबा के ऊपर बलिदान चढ़े, जबकि उन्हों को ब्रह्मा बाबा द्वारा अनुभूति हो। मैं अपना भी अनुभव बताती हूँ कि हमारे लौकिक पिताजी का हमारे से विशेष स्नेह था। मैं ज्यादा लाडली थी क्योंकि पढ़ने में होशियार थी, ज्ञानी थी, आज्ञाकारी थी, तो इसलिए हमारे पिताजी का स्पेशली ज्यादा प्यार था। इतने तक कि जब मैं मेडिकल स्टडी में स्टडी करती थी, सवेरे सवेरे जाना होता था तो हमारे पिताजी हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना के देते थे। तो समझो जब ब्रह्मा बाबा से मिली तो ब्रह्मा बाबा से इतना हमारा अलौकिक प्यार हो गया, ये जो कुछ करना होता था मैं ब्रह्मा बाबा से पूछती थी और ब्रह्मा बाबा से राय लेती थी। तो जो भी बाबा के सामने आता था, स्पेशली मधुबन में जब पहली बार आते थे ना, तो ब्रह्मा बाबा प्यार से मिलते थे और आते ही समझो हम स्नान करके बाबा के पास जाते थे। पहले बाबा से मिलके पीछे भोजन वगैरह करने जाते थे। मेजोरिटी हम बम्बे से आते थे ना, तो हम 12:30-1 बजे ऊपर पहुंचते थे। तो पहले हम स्नान करके ब्रह्मा बाबा से मिलने जाते थे। बाबा प्यार से पूछते थे कैसे है, सफर कैसे रहा, आज की मुरली पड़ी। तो जिस उन्होंने नाम बोल देते थे कहते पहले मुरली पढ़ो पीछे भोजन पर जाओ। तो बाबा का आज भी जैसे मुरली में बताया, मुरली से बहुत विशेष प्यार था। एक भी दिन मुरली देने बिगर चैन नहीं आता था। हॉस्पिटल में थे, ऑपरेशन किया था, तो भी फोन पर कोई न कोई दादी को मुरली सुनाते थे और कहते थे ये मुरली के पॉइंट्स सबको भेजो। सब इंतजार करते होंगे बाबा की मुरली का। तो हम लोगों से भी पूछते थे और कभी भी बहनें अकेली ट्रेन में जाती थी तो बाबा कहते थे जाकर टेलीग्राम करना कि आराम से पहुंच गई है। उन दिनों में तो टेलीफोन इतना नहीं जल्दी चलता था ना, क्योंकि टेलीफोन की लाइन बहुत बिजी होती थी, परंतु टेलीग्राम करते थे हम लोग कि हाँ बाबा हम कुशलता से पहुंच गए। और दादी जानकी भी अपना अनुभव सुनाती है। एक बार ये वो लोग बारिश की सीजन में आए मधुबन, तो रास्ता बीच में बंद था, तो क्या है कि आधे रास्ते तक एक बस जाती थी, फिर थोड़ा पैदल करना पड़ता था, पीछे दूसरी बस सामने से मिलती थी। तो बारिश में तो नेचुरली गंदे पांव वगैरह होते हैं, मिट्टी में, कादव में, कीचड़ में। तो जब दादी ऊपर आई तो बाबा ने गर्म पानी तैयार रखा था, कहा चलो बच्ची का पांव धुलाई करेंगे। तो बाबा ने खुद ने पांव धुलाई किया दादी का। तो रोज सवेरे मुरली के बाद भी पूछते थे सब बच्चे ठीक है, ठंडी के दिनों में पूछते थे आप सभी के पास ब्लैंकेट वगैरह ठीक है, और खाने के लिए भी जैसे आज आप देखते हैं कि जब साउथ इंडियन आते हैं तो इडली सांभर बनता है, वड़ा बनता है, डोसा बनता है, गुजराती आते तो गुजराती डिश बनती है, पंजाबी आते हैं तो मकई की रोटी और साग का सब्जी आदि आदि, जैसे जिस स्टेट से आते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग हैं उनको रोज छत चाहिए, कॉफी पीते हैं तो उनके लिए खास वो भी रखी जाता है। तो इसी रीत से बाबा को ख्याल रहता था जो बच्चे घर में आए खुश होके जाए, और बच्चे आते हैं जाने के पहले सौगात जरूर लेना हो। तो मैं जब पहली बारी मधुबन में आई तो मैं टूर करके आई थी, क्या था कि ज्ञान में आई तो पहले मम्मा से तो पहले ही दिन मिली, परंतु ब्रह्मा बाबा से सवा साल के बाद मिली। तो उस समय मैं बम्बई में थी, तो बम्बई से निर्मल शांता दादी यूपी पंजाब की टूर पर जा रही थी, तो उसके साथ हम तीन चार और भी दादी के साथ गए। तो जब हम पहली बारी मधुबन में आई तो बाबा से मिली, तो बाबा से बाबा ने पूछा कितने घर में, कितने घर में आपके मेंबर्स है, हर एक के लिए सौगात दिए। और मैं ज्ञान में आई तब डॉक्टरी पास तो कर ली थी, तो मम्मा जब बम्बई में थी मम्मा से पूछा कि मेरा विचार है मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करूं, बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा ने कहा नहीं, ब्रह्मा बाबा से पूछना जब मिलो तो। तो जब मधुमन में पहली बारी है मैंने बाबा से पूछा बाबा मैं मेडिकल प्रैक्टिस ना करूं और सेवा में लग जाऊं, क्योंकि तब तक हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी, उसके पहले मैं समझो पास तो कर ली थी परंतु हॉस्पिटल में समझो म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी में, स्कूलों में आदि आदि सर्विस करती थी। तो ब्रह्मा बाबा कहे नहीं तुमको तो डबल डॉक्टर बनना है, वो प्रैक्टिस भी करनी है, ये प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने कहा ठीक है, और फिर साथ में ये भी प्रश्न मेरे मन में था कि क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी चाहते थे कि मैं हम कांदिवली से बंबई के सबब से थे, तो लौकिक पिताजी चाहते थे कांदिवली में अपना डिस्पेंसरी खोलो। और मेरा विचार था कि कोई गांव में जहां डॉक्टर्स नहीं है वहां सेवा करो, बम्बई में तो बहुत डॉक्टर्स है। तो बाबा से मैंने ये भी पूछा कि बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा कहे कांदिवली भी तो गांवड़ा है ना, क्योंकि बम्बई शहर जो था जहां हमारे सेंटर्स वगैरह थे वो तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट करके एकदम सेंटर में है साउथ बॉम्बे में। तो बाबा ने कहा वहां करो, मैंने कहा ठीक है। वैसे तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं हॉस्पिटल चलाऊं, माताओं के लिए डिलीवरी और ये करते के लिए। मैंने कहा मुझे इस बंधन में नहीं बनना है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल है तो माताओं की कभी भी डिलीवरी होती है, अपने क्लास के टाइम में भी डिलीवरी होगी तो रात में भी डिलीवरी होंगे, तो कभी भी दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं तो डिस्पेंसरी चालू कर। तो फिर हमने फिर कांदिवली में ही अपना डिस्पेंसरी चालू किया। तो बाबा को दूसरी बात ये थी कि बाबा टीचर के रूप में भी बहुत पर्टिकुलर था, एकदम टाइम पर क्लास में आना और देखता रहता था कौन ऐसे ऐसे करता है, खुशी से मुरली सुनता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कई बार कि डांसिंग गर्ल को जो अप्रिशिएट करने वाले हैं, कदर करने वाले हैं, उनके सामने मजा आएगा। यदि कोई झुटका खाता होगा तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों की वैल्यू नहीं है, इसलिए झुटका खाते हैं। और उन दिनों में, बाबा के दिनों में तो सभी ब्राह्मण यंग थे ना, खुद तो ऐसे ही बैठते थे ना, सपोर्ट नहीं लेना पड़ता था उनको, किसी को भी सोफा कुर्सी कोई नहीं क्लासरूम में, और किसी को दीवार को टेक करने बैठना, बूढ़े है क्या इसलिए किसी को दीवार टेक करने बैठना है। और खुद टाइम पर आ जाते थे और सामने गद्दी पर बैठे तो सबको देख सकते हैं कौन टाइम पर आया कौन लेट आया। तो 6 बजे मुरली शुरू होती है, 6 में 5 सब दौड़ते होंगे पांडव भवन में कि मुरली बाबा आवे उसके पहले पहुंच जाए क्लास में। और कभी कभी बाबा क्या करते थे, मुरली के पहले सब कमरों में चक्कर लगाते थे कौन अपना कमरा साफ रखते हैं। कई बार क्या होते हैं जल्दी में होते हैं ना, पथारी ऐसे होती है, कपड़े ऐसे फेंकते हैं, ये हो नहीं, सफाई चाहिए। और कई बार रात को भी चक्कर लगाते थे कि रात को कौन सात्विक नींद में सोया है, कौन राजसिक नींद में है, किसकी तामसी नींद है, चेहरे से मालूम पड़ता है ना। जो सात्विक नींद में होगा शांत हर्षित होगा, जो तामसिक नींद में होगा उसका चेहरे में चिंता होगी। तो वो भी चक्कर लगाकर देखता था। और समझो शुरू में तो यज्ञ के शुरू में तो ये लोग है ना कभी डॉक्टरों से दवाई नहीं लेते थे, कहते थे डॉक्टर तो शूद्र है, उसका हाथ हमारे शरीर पर क्यों लगे, क्योंकि डॉक्टर कम से कम नाड़ी देखेगा, कम से कम हाथ पांव उनके लगेंगे ना चेक करने के लिए, छाती पर पेट पर सब चेक करेंगे, तो कहे सुदूध की हमारे दवा नहीं चाहिए। तो बाबा क्या करते थे, खुद जाकर दृष्टि देते थे। हमने प्रेम बहन की जीवन कहानी पढ़ी, तो प्रेम बहन का जो देहरादून में थी, अभी तो शरीर छोड़ा, एक दो साल हुआ, तो उनको ज्योतिषी ने शुरू से कहा था कि ये 16 साल में मर जाएंगी। तो उस समय वो मधुबन में थे और बहुत बीमार थे, तो बाबा सारी रात वहां बैठा रहा, दृष्टि दी और नया जीवन दिया। और कई दादियां अपना अनुभव सुनाती है, क्योंकि उस समय अपने विश्व रतन भाई वो थोड़ी इधर उधर की दवाई छोटी मोटी जानता था, तो समझो कुछ छोटी मोटी बीमारी होती थी तो विश्व रतन भाई दे देता था। फिर बाबा भी जाकर दृष्टि देना, उनको कभी माखी खिलाना, कभी कुछ करना, तो बाबा भी थोड़ा डायरेक्शन देते थे। और कभी नहीं हुआ, बहुत सीरियस होते थे, तो बाबा संदेश जी को भेजते थे कि जाओ जाके पूछ के आओ कि इनके क्या इलाज करना है। एक बारी जो बंबई की शिव दादी है, उसको बहुत एकदम डिसेंट्री हुई थी, जिसमें जैसे टट्टी में खून और गिरता है, थोड़ी थोड़ी टट्टी होती है परंतु खून भी जाता है, म्यूकस भी जाता है, वो हो गया। तो बाबा पहले तो पूछते थे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो पूछा तो कहा नहीं, डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, डॉक्टर की दवाई तो नहीं लेंगे। फिर पापा ने संदेश को भेजा ध्यान में कि उसका क्या करना है, तो संदेशी संदेश लाई कि इसको अनार का जूस दो। अभी उस समय अनार की सीजन नहीं थी, तो ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्शन दिया विश्व किशोर भाव को कि जाओ अनार ले आओ। और भाव का भी इतना निश्चय था बाबा में कि बाबा ने डायरेक्शन दिया मिलना चाहिए। तो भाव ने क्या किया, शॉप में जाता था और पीछे के दरवाजे से जाता था कि अंदर कहां छिपा कर तो नहीं रखा है, और कहां से अनार ले आया। फिर अनार का जूस निकाला, थोड़ा गर्म किया, उसमें नमक काली मिर्ची डालकर दो दो चम्मच आधे घंटे घंटे में पिलाते रहे और उसका डिसेंट्री अच्छा हो गया। तो क्या है कि बाबा कहता है ना, मैं सर्जन भी हूं, तो कभी कभी ऐसी जादूगरी करते थे कि जो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते वो श्री बाबा डायरेक्शन देकर। कईयों का हमने अनुभव सुना कि श्री बाबा के डायरेक्शन से उनका ऑपरेशन भी बंद हो गया, क्योंकि प्रकाशमणि दादी को भी एक बारी ब्लीडिंग हो रहा था बहुत, तो डॉक्टरों ने कहा कि उसका छोटा ऑपरेशन होता है DNC, डायलिटेशन और क्यूरेटाज, उसको करा लो। तो उस समय बंबई में अनिला बहन थी, तो अनिला बहन ने दादी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो दूसरे दिन सवेरे शील दादी ध्यान में गई, तो ध्यान में गई तो बाबा ने कहा दादी को क्यों ले गए हॉस्पिटल में, हमारे से राय ली, छुट्टी ली, आने उसको लाओ वापस, ऑपरेशन नहीं करना है उनको, खटिया पर ऐसे थोड़ी सर नीचे हो और पांव पर वो ऐसे सुलाओ और पेट पर आइस की बैग रखो, उससे अच्छा हो गया। तो इसी रीत से बाबा शिव बाबा चमत्कार भी दिखाता रहा, ब्रह्मा को तो मीडियम बनाया था ना, तो टीचर के रूप में रोज मुरली देना है और गुरु के रूप में शिक्षा देनी। और शिक्षा ज्यादातर बाबा पर्सनली नहीं देता था, मम्मा पर्सनली देती थी। बाबा क्या करते थे, मुरली धड़ाता, जैसे आज भी कैसे कहा पवित्रता से कितना नुकसान होता है, धर्मराज के रूप में आपको बाप नहीं मिलेगा, धर्मराज मिलेगा, इतनी कड़ी कड़ी सजा होंगी। तो उन दिनों में भी मुझे याद है हमारे साथ एक कुमारी आई थी मुरली मधुबन में बम्बई से, तो बाबा ने कहा कि कन्याओं को नौकरी क्या करनी है, नौकरी है टोकरी, कन्याओं को तो बाबा की सेवा में लग जाना है। तो जो समझो नौकरी के पीछे पड़ते हैं वो जैसे के जैसे बंदर जैसे भूंग रहे, उनको अच्छे लगते हैं। जो ज्ञान रत्न पढ़कर उनकी सेवा करते हैं तो उसकी कितनी कमाई होती है, तो उसको पर्सनली नहीं कहा, मुरली में। कभी कभी कोई दो बहनों का या दो भाइयों का आपस में बहुत फेमिलियरिटी होती है, तो बाबा क्लास में ही बताते थे कि कई बहनों की बहनों के साथ फेमिलियरिटी होती है, भाइयों की भाइयों के साथ फेमिलियरिटी होती है। अभी जो क्लास में बैठे हैं वो जानते हैं कई बार तो किसकी किसके साथ फेमिलियरिटी है, तो समझ जाते थे आज बाबा की मुरली फलाने के लिए चली है। तो इसी रीत से बाबा ऐसे बोल देते थे, तो बाबा से कई बच्चे डरते भी थे, मम्मा से कोई नहीं डरता था क्योंकि मम्मा बहुत प्यार से आपस में बुलाकर क्या तुमने ऐसे किया है, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ना। तो जिसकी भी जिसके बारे में कंप्लेन आती थी मम्मा बुला के पूछ लेती थी। तो बाबा प्यार भरी शिक्षाएं देता था, शक्ति भी देता था, जिस कारण लोगों के लिए बाबा की शिक्षाओं को पालना सहज हो जाता था। फिर बाबा की परखने की शक्ति बहुत तेज थी। कोई भी व्यक्ति को 5 मिनट में देखकर समझ जाएगा दे अभिमानी है, दे ही अभिमानी है, उसका पास क्या था, फ्यूचर क्या होगा। कई बार कई बहने हैं ना अपने स्टूडेंट्स को लाती थी और समझती थी हमारा ये स्टूडेंट तो बहुत सर्विसेबल है, उसकी प्रेज करती थी। फिर उसके जाने के बाद बाबा जो साथ में दादी होती थी ना उसको बता देती थी ये चलने वाला नहीं है, शोक पीस है, कई बहुत शोक करते हैं ना, ये करेंगे ये करूंगा परंतु करते नहीं। और कई है इनके पास में लुटेरों थे और उन्होंने किसी का खून भी किया था, बाबा जान जाते थे, परंतु बाबा इतने प्यार से मिलते थे जैसे कि लाडला बच्चा। और हम लोग जब ज्ञान में आए तो उस समय हम क्या करते थे, थोड़ा ही हमने स्टडी की, थोड़ा निश्चय हुआ, हम पत्र लिखते थे कि बाबा हम आपके बच्चे बने हैं, इतने साल से ज्ञान में आए, इतने समय से ज्ञान में आए हैं, ये अपना पासपोर्ट फोटो भेज देते थे। और एक मास के बाद हमको कहा दादी ने कि दादी रतन मोहिनी दादी बम्बई से यहाँ आ रही थी, तो दादी जा रही है अपने कर्मों की कहानी लिखकर। तो हमने अपने कर्मों की कहानी लिखी, क्या ज्यादा क्या होता था, भाई बहनों का झगड़ा वगैरह होता था और तो कुछ पास कर्म किए नहीं थे। साथ में फोटो भी भेजा। फिर रतन मोहिनी दादी ने आकर कहा कि बाबा ने तो तुम्हारा फोटो देखकर तुमको पहचान लिया। तो क्या था कि यज्ञ में आते ही, हम जब यज्ञ में आई उसके पहले जो मेडिकल प्रैक्टिस करती थी, नौकरी करती थी, तो हमको जो पे मिलता था, तो 62 में मैं ज्ञान में आई तब इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा था और उसमें जो भी नौकरी करने वाले थे गवर्नमेंट में काउंसिल में, उनको कहा गया था कि आपकी पे से आपको जो कुछ दे रहा है नेशनल डिफेंस फंड में दो। तो उस समय हम अपना 90% है इनकम नेशनल डिफेंस फंड में देती थी, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं लड़की की कमाई तो माँ बाप रखते नहीं, और भी हमारा रहना खाना पीना सब फ्री होता है और सब कपड़े हैं जूते सब माँ बाप खरीद के देते थे। तो मेरा अपना तो पर्सनल खर्च खास कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रेन का पास निकालना ये वो होगा, तो मेरी इनकम मैं वहां देती थी। फिर ज्ञान में आई तो मैंने एक भाई का अनुभव सुना कि वो अपनी सारी इनकम सेंटर को दे देता था, वो रहता भी था सेंटर में, परंतु सब इनकम का के मैं यज्ञ में दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरी जो 90% मैं वहाँ नेशनल डिफेंस फंड में थी वो बाबा के बॉक्स में डालने लगे। और समझो उस समय बम्बई में सिर्फ दो ही सेंटर थे, शहर में और एक सायन में, तो हमारी एरिया में कभी कभी कुछ कोई मांगते थे, कोर्स करना है, क्या करना है, क्लास कराना है, मंदिरों में जाके भाषण करना है, तो दादी का तुम जाके करा के आओ, तुम क्लास कराओ। तो समझो ज्ञान के दो मास के बाद मैं क्लास कराना कोर्स कराना ये सब शुरू कर दिया। तो उस समय सिर्फ दो ही बम्बई में सेंटर थे और दोनों फ्लैट में थे। तो रमेश भाई ने सोचा कि बाबा का आश्रम है, वो आश्रम प्रॉपर मकान होना चाहिए, फ्लैट में मकान होने से थोड़ी अच्छा लगता है। तो मुझे रमेश भाई ने पूछा कि आप कांदीवली के तरफ देखो मकानों की क्या प्राइस है। तो मैंने मन में सोचा कि हमारे लौकिक पिता का मकान था, बंगलो था, उसके पीछे उनकी जमीन भी थी। मैंने सोचा कि मकान ढूंढने के पहले ये हमारी जमीन है, क्यों नहीं हमारे लौकिक पिता से पूछूं कि यहाँ हम मकान बना सकते हैं सेंटर के लिए। परंतु लौकिक पिता के पहले हमने ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा मेरे पिताजी का जमीन का प्लॉट है, मैं पूछूं उनको। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारा लौकिक पिता यदि जमीन देगा तो अलौकिक पिता मकान बना देगा। तो मैंने अपने लौकिक पिता से पूछा तो कहे नहीं नहीं लड़कियों को इतना नजदीक नहीं रहना है, तुम फ्लैट ढूंढो और मैं इतना पैसा दूंगा, अपना फिगर दिया कि इतने पैसे में फ्लैट ढूंढो। तो फिर मैंने फ्लैट ढूंढना शुरू किया क्योंकि मेरी बहनों के लिए हमारे लौकिक पिता ने शादी में फ्लैट दिया था और मैंने कहा मुझे तो शादी करनी नहीं है, तो मुझे पिताजी कुछ दो। तो हमारे पिताजी ज्ञान में नहीं थे, मम्मा बाबा से मिले थे क्योंकि 62 में ज्ञान में आई थी, मम्मा भी थी उस समय, तो मम्मा से भी मिले थे, ब्रह्मा बाबा से भी मिले, परंतु पक्का वैष्णव कहा नहीं, शिव पर सीधा नहीं जाना है, पहले देवताओं की पूजा करनी है। मुझे भी कोशिश किया कि तुम पहले सारा शास्त्र वगैरह ठीक पढ़ो, गीता पढ़ो, ये करो, क्योंकि उनका कोई मित्र था बहुत पंडित था तो उनसे मिलाया, उसने अपनी सच्ची गीता की बुक उस समय थी, कहा कि ये गीता में ऐसे ऐसे क्या लिखा है, शास्त्रों में तो ये लिखा है। मैंने कहा कि शास्त्रों की बात मैं नहीं जानती, मैंने अपना जो अनुभव किया है मैं समझती हूँ ये सच्चा है ज्ञान और मैं तो इस पर चलूंगी। तो हमारे पिता ने कहा जो भी करना है करो। तो जब मैंने कहा भी मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो जैसे मैं कहूँ तो मैं तो सचमुच डबल भाग्यशाली की गोलोक के पिता के हाथ में नहीं थे, तो भी 1952 में हमने कहा मैं शादी करूंगी या तो डॉक्टरी पढ़ूंगी, मैं दोनों नहीं कर सकती हूँ क्योंकि शादी किया माना बच्चे पैदा करो, उनको घर संभालो, फिर कहेंगे अभी मेडिकल स्टडी प्रैक्टिस नहीं करनी। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ो, पढ़ाई की ज्ञान में आ गए। फिर मैंने कहा अभी मुझे शादी नहीं करनी है, तो कहा ठीक है तुम पढ़ी लिखी हो कमाती हो मुझे कोई चिंता नहीं है, तुमको जो करना है करो। तो फिर बाबा ने राय दी तो हमने इस सेंटर खोला। तो क्या है कि बाबा ने कैसे शुरू से हमको पहचान लिया, और पत्र में ऐसे ऐसे टाइटल लिखते थे तुम सरल चित हो, निर्माण चित हो, शांत हो आदि आदि टाइटल लिखते रहते थे। तो उस रीत से हमने सेवा शुरू कर दी और ब्रह्मा बाबा हमको कहते थे कि तुम मम्मा का फूल हो क्योंकि मम्मा द्वारा ज्ञान लिया था, बना बनाया फूल है, निर्मल आश्रम कहता था या डबल डॉक्टर कहता था। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने और बम्बई की दादियों ने हमारी सबकी पालना इतनी अच्छी रीत से की और अव्यक्त बाप दादा से भी हमको अच्छे अच्छे अनुभव हुए क्योंकि उन दिनों में बम्बई में पुष्प शांता दादी, शील दादी आदि संदेशी अच्छे थे। तो उन दिनों में तो पुष्प शांता दादी द्वारा मम्मा का प्रवेशता होती थी, ब्रह्मा बाबा की प्रवेशता होती थी और हमको उसी समय भी अच्छी रीति पालना मिले क्योंकि क्या होता था कि ब्रह्मा बाबा जब बाप दादा आया उनके तन में, दादी के तन में, तो हम गोद में गई तो बाबा ने कहा हाँ हाँ थकी हुई आई हो, बहुत भक्ति की है तो थकी हुई आई हो। और फिर जब राखी का प्रोग्राम होता था तो उन दिनों में संदेशी के तन में प्रिंसेस आती थी और राखी बांधती थी। और राखी बांधने के लिए भी क्या करती थी, वो जिसके ऊपर नजर रखती थी उसको पहले आकर राखी बांधनी होती है। तो समझो पहली राखी के दिन सबसे पहले मुझे राखी बांधे। और उस संदेशी भी है ना, वो जानती नहीं थी कि ये मेल है या फीमेल है ना। कई भाइयों के ऊपर वो फूल बांधती थी और किसी का चश्मा देखती थी तो कहती थी ये क्या है, क्योंकि सतयुग में तो चश्मा होता नहीं। तो भाइयों को बहन तरीके देखती थी, उनके भविष्य रूप देखती थी। और घड़ी भी होती थी ना, तो ये क्या है, क्योंकि सतयुग में घड़ियां थोड़ी पहनते हैं कोई। तो समझो पहली जन्माष्टमी को क्या हुआ कि सवेरे सवेरे हमको प्लान दिया कि तुमको भी दादी जो हम वहां जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात को भोग लगता था, 10:30 से सब आएंगे, 11:30 भोग लगेगा, बरोबर 12 बजे कृष्ण उसके संदेशी के तन में आएंगे। तो मुझे प्रोग्राम दिया कि तुमको भी गद्दी पर बैठना है। सभी ने समझा हो सकता है इसके तन में कुछ आए। तो हम तो जैसे प्रोग्राम मिला तैयार होके गद्दी पर बैठी। तो हमको पार्ट मिला जसोदा का, कृष्ण दादी के तन में आया और हमको जसोदा का पार्ट मिला। तो जन्माष्टमी के दिन क्या होता था, जैसे 12 बजे कृष्ण ऐसे आता था, जैसे छोटा बच्चा जन्मता है ना, कैसे जन्मता है, जन्मता है थोड़ी देर आंख बंद करता है, फिर आंख खोलता है और देखता है ये क्या है, कौन सी सभा है, क्योंकि कलयुगी सभा को तो समझ नहीं सकता है। तो फिर ब्राह्मण है वो कृष्ण को खेलने के लिए बुलाते थे, तो थोड़ा बच्चा सोचता था कि कैसे जाएं, फिर माँ को उसको कहना पड़ता है जाओ जाओ खेलो। और कई फिर नटखट ब्राह्मण होते हैं ना, क्या चंचलता करते थे, बंसुरी दिखा के वो जब लेने जाए ले ले, तो फिर वो माँ को कहेगा देखो क्या हमको तंग करते हैं ये लोग, इशारे से, बोलना नहीं है, इशारे से। और फिर खेलता, फिर थक जाता है, माँ की गोद में आता है। तो इस रीति से बाबा ने जैसे ने कुमारी को माँ का पाठ पर बजाना है वो सिखाया। तो इस रीति से अव्यक्त बाप दादा ने भी अच्छी रीति हमारी पालना की। और उसी रीति से ब्रह्मा बाबा ने अंत तक, जैसे आज बताया ना मुरली में, अंत तक सेवा करते रहे। 18 जनवरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए क्या हुआ, सवेरे मुरली नहीं चलाई, थोड़ा छाती में दर्द था। तो रात को कहा अभी आज तो मैं मुरली सुनाऊंगा, रात को मुरली सुनाया, अंत तक पत्र लिखते रहे, मुरली सुनाते रहे। और 18 जनवरी रात को 9:30 के बजे शरीर को त्याग करके चले गए। पर उस समय दादी प्रकाशमणि सामने थी, तो उसके हाथ में हाथ दिया और बैठे बैठे चले गए, क्योंकि बाबा हमेशा कहता था कि मौत इतना अच्छा है जो बैठे बैठे प्राण छूट जाए, तो उनका बैठे बैठे प्राण छूट गया। और हमारे पास फोन आया रात को 10 बजे के करीब, तो यहाँ से दादी प्रकाशमणि ने जोन इंचार्ज दादियां थी उनको बताया कि आप आपके सब सेंटरों को बता दो। तो उस समय महाराष्ट्र की जोन इंचार्ज ब्रिजेंद्रा दादी थी, तो 10 बजे हमारे पास ब्रिजेंद्रा दादी का फोन आया, निर्मला ड्रामा पर अडोल है, फिर समाचार सुनाया। तो हम तीन बहनें थी सेंटर पर, तीनों फिर योग में बैठ गई। और सवेरे सवेरे, क्योंकि उन दिनों में प्लेन में ट्रेवल ज्यादा नहीं करते थे, ब्रह्मा बाबा के टाइम में न ब्रह्मा बाबा प्लेन में गए न भाई बहने प्लेन में जाते थे। तो सवेरे सवेरे फर्स्ट ट्रेन में मुंबई के जो भी मुख्य टीचर्स है चली गई, हमारी भी दो साथी गए, हम तो जाते हैं। हमने कहा भले जाओ, मैंने कहा सवेरे, दूसरे दिन मैंने कहा सवेरे रविवार है, सब स्टूडेंट आएंगे, उनको कौन जवाब देगा, इसलिए मैं और शिल दादी दोनों बम्बई में रह गए, बाकी मेजोरिटी टीचर चले गए। तो फिर दो दिन के बाद मधुबन से फोन आया, कहा आप भी आओ, तो मैं और शिल दादी लास्ट दिन आ गए। तो हम जब आ गए तब तक सारा ब्रह्मा बाबा की अर्थी को सारे माउंट आबू में घुमाकर वहाँ जहाँ शांति स्तंभ है, उस समय तो ग्राउंड ही था ना, ट्रेनिंग सेंटर था, ग्राउंड ही था, तो वहाँ सब इकट्ठे हो गए थे। अंतिम ही हम लोग अंत में ही पहुंचे, अंत में हमने पुष्पांजलि वगैरह दी। और उस समय जनवरी 18 को वहाँ इस टाइम मधुबन कोई नहीं आते थे, हम बाबा को दिल्ली बम्बई बुलाते थे कि बाबा यहाँ करो, अभी करो अपना चेकिंग भी कराओ, क्योंकि डायबिटीज वगैरह था तो ब्लड की चेकिंग वगैरह अवन अवर करनी होती थी, तो वहाँ बुलाते थे। तो उस समय पहली बारी मधुबन में 700 भाई बहने थे, पहली बारी 700 एकदम मैक्सिमम। और हमने देखा कई भाई लोग, बड़े बड़े भाई जैसे महेंद्र भाई और ओम प्रकाश भाई सब रो रहे थे, और सबके मन में प्रश्न उठता था कि अब क्या होगा, बाबा नहीं है अभी क्या होगा। मेन बात ये थी कि अभी मुरली बिगर हमारा क्या होगा। तो सब बहुत दुखी थे, तो इसलिए समझो अंतिम संस्कार के बाद जब शाम को शिव बाबा ने संदेशी द्वारा सबको संदेश दिया कि मुरली रिवाइज कोर्स होंगी, जो मुरली हुई है जैसे गीता आज तक पढ़ते रहते हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ते रहते हैं, ऐसे मुरली जो बाबा ने चलाई है वही रिवाइज होंगी। निमित दीदी दादी को बनाया और बाबा ने कहा कि अब अव्यक्त रूप से आपसे मिलता रहूंगा, बाबा तो है ही आपके साथ, क्योंकि शुरू से ही बाबा कहते थे मम्मा बाबा आपके साथ अंत तक रहेंगे। इसलिए पहले तो जब मम्मा का देहांत हुआ तब डॉक्टरों ने मुंबई में छुट्टी दे दी, अभी हम मम्मा की कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसको जहाँ ले जाना है ले जाओ। तो जब विश्व किशोर दादा ले आ रहा था यहाँ, डॉक्टर ने ना कहा, पर विश्व किशोर दादा कहे नहीं मम्मा तो हमारे साथ अंत तक रहेंगे, मम्मा जा नहीं सकती। तो जब मम्मा भी चली गई, ब्रह्मा बाबा भी चला गया, तो सबको तो ये होता था कि अभी कौन हमारा। परंतु दीदी दादी ने फिर कारोबार संभाल लिया, और जो न भी पहुंचे थे, क्योंकि कई लोग हैं पहुंच नहीं पाए थे, तो वो भी पहुंच गए। दादी ने सबको बुला लिया, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि देखा कि जो वहां आए थे सब बाबा का संदेश सुनकर हल्के हो गए। तो दादी ने सबको बुला लिया, फिर हमारे सामने ही मीटिंग हुई, क्योंकि उस समय 17 को ही तो ये म्यूजियम का मकान खरीदा था। तो मीटिंग हुई कि अभी म्यूजियम करें या ना करें, तो पहले तो ये सवाल उठा करें कि नहीं करें। आप सभी ने कहा नहीं नहीं सेवा तो चालू रखनी है, क्यों बंद करें। इसलिए सभी ने कहा नहीं म्यूजियम तो चालू रखना है, और फिर उसका उद्घाटन मई में हुआ। और दीदी दादी ने सोचा अभी ब्रह्मा बाबा नहीं है, लोग कैसे आएंगे, नहीं तो बाबा को मिलने लोग आते रहते थे। तो दीदी दादी ने युक्ति रची, भट्टियां चालू की, ट्रेनिंग चालू की, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा सामने था तो कोई दादियों से क्लास करना नहीं चाहते थे, और ब्रह्मा बाबा थोड़ी सारा दिन भट्टी कराता रहेगा। इसलिए जो ट्रेनिंग होती थी ना, चंद्रमणि दादी अमृतसर में कराती थी, और मुंबई में हमारे पास एक बारी सेंटर पर ट्रेनिंग हुई कुमारियों की, बाकी ज्यादातर अमृतसर में ट्रेनिंग होती थी। तो इसलिए दीदी दादी ने अभी सोचा कि हाँ चलो ट्रेनिंग शुरू करो। तो पहला ग्रुप 2 मास की ट्रेनिंग, पीछे धीरे धीरे 1 मास की, धीरे धीरे 15 दिन की, ऐसे एक के बाद एक ग्रुप की ट्रेनिंग या भट्टी, क्योंकि अलग अलग आयु के लोगों को बुलाते रहे हैं। पहले तो जिनको सेंटर में रहना है उसकी ट्रेनिंग कराई आदि आदि। तो इस रीत से दीदी दादी ने मधुबन को बिजी रखा, और वो ही सिस्टम चालू रखी जो ब्रह्मा बाबा ने चालू रखी। तो शुरू शुरू में तो लोग कंपेयर करते थे कि हाँ बाबा मुझे ऐसे चलाते थे, ऐसे प्यार करते थे, ऐसे भेजते थे मुरली, ऐसे भेजते थे। धीरे धीरे सभी को साक्षात्कार होता रहा कि ये दीदी दादी मम्मा बाबा जैसे ही है। तो 1-2 साल में सभी ने दीदी दादी से पालना शुरू कर दी, और फिर दीदी दादी ने सोचा कि अभी मधुबन को बिजी रखने के लिए कोई भाई भी चाहिए सर्विस के लिए। फिर निर्भर भाई को बुला लिया और वहाँ ऑफिस शुरू कर दी आदि आदि। तो इस रीत से ब्रह्मा बाबा ने जो भी सिस्टम शुरू की अभी तक चलती रहती कि ब्रह्मा बाबा ठंडियों में सबको ब्लैंकेट वगैरह देते थे, तो वो भी चालू कर दिया था। और ब्रह्मा बाबा को जैसे कि तरस पड़ता तो सबको बच्चे बच्चे कहते थे ना, चाहे मजदूर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, वीआईपी है, सबको सबको बच्चे बच्चे। चिड़िया भी आती थी उसको भी बच्ची, क्योंकि झोपड़ी में बैठते थे ना रोज, उनका टाइम फिक्स, और एक चिड़िया आती थी तो बाबा लच्छू को कहेंगे लच्छू बच्ची इस बच्ची को टोली दो, तो रोज फिर लच्छू में टोली रख देती थी, तो वो रोज चिड़िया आती थी। उसी टाइम, क्योंकि उसको मालूम था इस टाइम उसको खाना मिलेगा। और जो भी होता था, बच्ची बच्चे, और कभी देखते थे कि उन्हों के पास गर्म कपड़े नहीं है, ठंडी है, तो लच्छू दादी को कहता था, लच्छू इसको कुछ गर्म दो, स्वेटर दो, सर दो, आदि आदि। तो इस रीत से बाबा का जो प्यार मिला अभी तक, कई बाबा के टाइम के अभी तक है, और यज्ञ में सेवा करते रहते हैं। तो उस समय का जो मिस्त्री था ना, गलबा क्या है, मिस्त्री था ना, वो अभी तक पांडव भवन में है। तो इससे क्या है कि बाबा ने हरेक को इतना प्यार से पाला, जो प्यार के कारण सरेंडर होना सहज हो गया। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठे।